तो ये भजन अभी आप सब लोगों ने हरे कृष्णा हरि बोल, हाँ ये भजन आप सब लोगों ने अभी सुना। एकादशी के दिन इस भजन को गाने का नेम है। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ चौथे नंबर पे गुरु परंपरा में चौथे नंबर पे उनका स्थान पे होंगे। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, गौरकिशोर दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर। सो भक्ति विनोद ठाकुर महाशय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी हैं। उन्होंने बहुत सुंदर वैष्णव भजन लिखे हैं और चेतना महाप्रभु की शिक्षा और भक्ति 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने प्रकट किया, उनके जीवन में प्रकट हुई, तब तक तो वो ऐसे रहे हैं। हरे कृष्ण। तो उनके बहुत सारे भक्त हैं और भजन हैं। हरे कृष्ण। तो ये एकादशी के दिन भजन पहनने जो गाने का है इसको सुन लीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन का मतलब भगवान श्री कृष्ण को याद करना, भजन का मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, भजन का मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। जो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं भगवान की, जब कोई शुद्ध भक्त हमारे को अपने चरण की धूलि देगा तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य शिक्षा में कहते हैं कविराज गोस्वामी, भक्ति जन्म होइते भक्त संगे। भक्ति का जन्म ही भक्त के संग में होता है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, आप जो भी आज हरे कृष्ण संस्था से जुड़े हैं अथवा हरे कृष्ण जप रहे हैं, इसमें किसी न किसी भक्त के संग से ये सब हुआ है, नहीं तो अपने आप नहीं हो सकता है। भक्त का संग है या प्रभुपाद का संग उसके पुस्तक के द्वारा हुआ है, तभी हम सब लोग कैसे भी भक्ति में जुड़े हैं। तो भक्ति के लिए भजन के लिए अनुकूल क्या है, अनुकूल का मतलब होता है सहायक, सहायक का मतलब हेल्पिंग, व्हाट इज फेवरेबल फॉर डिवोशन। भगवान के भजन करने के लिए, हरे कृष्ण जपने के लिए, भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए क्या चीज अनुकूल है, क्या फेवरेबल है, शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्त के चरण रेणु, चरण का मतलब चरण और रेणु का मतलब धूली, शुद्ध भक्त के चरण की धूली, इसका अर्थ क्या है, उसकी कृपा। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पांव के अंदर से जाके धूली निकाल के आएंगे, इसका अर्थ है उसकी कृपा। शुद्ध भक्त की कृपा होगी तभी भगवान का भजन कर सकते हैं, अपने आप भगवान का भजन करना संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु की शिक्षाओं में 5 चीजें जो भक्ति के लिए महत्वपूर्ण बताई गई हैं, उनमें से एक चीज है भक्तों का संग। जो 5 मुख्य चीजें बताई गई उनमें सबसे मुख्य एक है भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में भक्तों की कृपा से केवल हम भगवान का भजन कर सकते हैं, अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा इसका अर्थ है भगवत भक्त जो शिक्षा देता है उसका सेवन करना। भक्त सेवा का अर्थ ये है कि भक्तों के संग में जो शिक्षा हमारे को भगवत गीता भागवत की मिलती है उसको जीवन में स्वीकार करना, अथवा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भक्त की सेवा करना। और भक्त की सेवा क्या है, असल में भक्त की सेवा है भगवान का नाम जपना। सबसे बड़ी भक्त की सेवा यह है कि भगवान का नाम जपना। शारीरिक सेवा तो वैसे भी कोई ना कोई किसी की करता ही है, बच्चों की मां करती है, छोटा बच्चा है मां रोज सेवा करती है कि नहीं करती है, वो पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु की सेवा करता है, ये सेवा नहीं। असल में सेवा का भाव ये है कि शुद्ध भक्त जो भगवत कथा का कीर्तन सत्संग और शिक्षा दे उसको जीवन में सेवन करे, उसको जीवन में स्वीकार करे, तो उससे क्या लाभ होगा? प्रेम लतिकार मूल। प्रेम लतिका क्या है? ये चेतना महाप्रभु ने जब शिक्षा दी थी रूप गोस्वामी पाद को प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम के ऊपर, तब कहा था ब्रह्मांड भेमेते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कई लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, कोई हिसाब नहीं है, लेकिन कोई एक भाग्यशाली कोई होता है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, तब शुद्ध भक्त का साधु संत का संग मिलता है और साधु के संग से साधु उसके हृदय में भक्ति का बीज स्थापित करता है। तो भक्ति का बीज क्या है? भक्ति का बीज क्या है? भक्ति का बीज है नेम पालन करना, यही भक्त की सेवा है। जो भक्त शिक्षा देता है कि चार नेम पालन करना है, सवेरे उठना है, माला जपना है, ये भक्ति का बीज। तो कौन सी भक्ति के बीज से क्या उत्पन्न होगा? भक्ति की लता उत्पन्न होगी। लता का मतलब क्या है? वाइन। हाँ, लता देखिए ना, लता पेड़ों के ऊपर चढ़ती है, ये आपका वो शूशु बनता है, ये लता है ना, ये घूमती जाती है। हाँ, एक पेड़ों के ऊपर चढ़ता है, ये लता इसको बोलते हैं। तो ये जो भक्ति की लता है, जो गुरु जन बीज स्थाप डालते हैं, क्या प्रभुपाद जी ने जब किसी को शिष्य बनाया तो क्या बोला? चार नियम का पालन करो और हरे कृष्णा मंत्र जपो। ये भक्ति की लता का बीज है, ये बीज है, नियम पालन करना ये बीज है। अब खेत आपका है, उसके अंदर बीज नहीं डालोगे तो कुछ पैदा होगा क्या? तो ये शरीर जो मानव मिला है, इसमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, उसके लिए बीज डालेंगे तब होगी, नहीं तो कैसे होगी? तो उससे क्या उत्पन्न होगा? उससे एक लता उत्पन्न होगी। उस लता के अंदर क्या होता है? फल फूल होते हैं। तो उस लता का फल क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये कौन सी लता है? प्रेम लतिकार मूल। जो प्रेम की लतिका है, लतिका वाला प्रेम की जो वाइन है, जो बेन है, उसका मूल क्या है? भक्त सेवा। इसका अर्थ यह है कि नेम पालन करना, भक्तों के संग में रहकर, ये है हमारी जीवन में जो भक्ति है उसका मूल है। मूल का मतलब फाउंडेशन है उसका, उसका बीज है। और फिर दूसरा क्या चीज जरूरी है भगवान की भक्ति करने के लिए? माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कौरी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि एकादशी को बोलते हैं, एकादशी माधव तिथि है। माधव किसको कहते हैं? माधव, मां लक्ष्मी को कहते हैं, धव उसका पति, लक्ष्मी पति भगवान विष्णु। माधव तिथि, ये स्पेशल एकादशी को माधव तिथि कहते हैं। इसका फल क्या है? भक्ति जननी, ये भक्ति का जन्म, भक्ति को जन्म देती है। चेतना महाप्रभु ने स्वयं अपनी माँ सची देवी को कहा, माँ एक मेरी बात मानोगी, मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। बोला बेटा जो चाहिए वो मांगो। बोलो माँ एकादशी का पालन किया करो, एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो। चेतना महाप्रभु ने और कोई शिक्षा सची माता को नहीं दी, लेकिन एकादशी पालन करने के लिए माता जी को विशेष रूप से कहा। बंगाल में ऐसे है कि जब बूढ़ी हो जाती थी माताएं तो एकादशी रखती थी, लेकिन छोटी उम्र में नहीं रखते थे। लेकिन महाप्रभु चेतना ने एकादशी रखने के लिए अपनी मां को ये विशेष शिक्षा दी। तो भक्तों के लिए एकादशी का व्रत करना ये एक नित्य नियम होना चाहिए। 24 एकादशी साल में है और सब एकादशियों का वो क्या कहते हैं? जतने पालन कोरी। जतने पालन करी का मतलब वेरी सीरियसली, जतन का मतलब होता है ध्यान के साथ, अनजानी नहीं करनी, हमें पता नहीं एकादशी कब थी, नहीं, पहले से पता करना एकादशी कब है। जोतन करी पालन करी, उसका जतन करके पालन करना चाहिए। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी। कृष्ण बसती, अब भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थान है उन सब स्थान का परम आदर करी, आदर करी मतलब उनका बहुत बड़ा सम्मान करना चाहिए। जैसे वृंदावन आदि भगवान के लीला स्थान है, मथुरा द्वारका आदि भगवान के जो है वो धाम है, ऐसे भगवान का मंदिर जो है जहां हम जाते हैं, इन सब स्थानों का बहुत बड़ा आदर करना चाहिए। जैसे मंदिर के लिए ये कहना होता है, मंदिर के अंदर जाते हैं तो जूता पहन के नहीं जाना है, साफ हाथ पांव धो के ऐसे आदमी साफ सुथरे होके मंदिर में जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और जब प्रणाम करते हैं तो वहां एक पेटी रखी है उसका नाम है प्रणामी, तब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए, फल फूल कुछ ले जाए अथवा लक्ष्मी धन जो भी भगवान की है वहां करना चाहिए, ये आदर है भगवान का। तो भगवान के स्थान जो भी है तो भगवान का मंदिर भी भगवान का स्थान है, उसका ही बहुत सम्मान या आदर करना चाहिए। तो आदर करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे तो दूर की बात है, ये शरीर भी भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, इसका भी आदर करना चाहिए, इसके अंदर कचरा मैल नहीं डालना चाहिए। ये मंदिर किसने बनाया, ये मंदिर हमारे यहाँ किसने बनाया, आपके यहाँ अक्वायर में मंदिर होगा ना, किसने बनाया, लोगों ने बनाया ना, मूर्ति को कौन लाए, लोग लाए, मूर्ति किसने बनाई, लोगों ने बनाई, फिर भी उसका नेम है कि नहीं है कि अंदर जाओगे तो जूती मत पहन के जाओ, ऐसा नेम है ना। तो मंदिर इंसान ने बनाया, मूर्ति इंसान ने बनाई, फिर भी उसका नेम बनाया कि इसके अंदर ऐसे उठो इसे बैठो, भाई मंदिर के अंदर कोई शराब नहीं खाना, कोई भी मंदिर में शराब नहीं पीते, कोई भी मंदिर में मांस नहीं खाते हैं, अभी भी किसी में खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं ना, तो नेम है कि नहीं है। तो जो मंदिर इंसान ने बनाया, जिसके मूर्ति भी इंसान ने बना के स्थापित की, उसके तो नेम है। ये शरीर किसने बनाया, भगवान ने, इसके अंदर बैठा कौन है, भगवान, भगवान ने मंदिर बनाया ये शरीर, इसके अंदर भगवान बैठा है और इसका कोई नेम नहीं, इसके अंदर जो चाहे वो डाल दो, हाँ इसके अंदर जो चाहे वो डालो, जो अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी जो आया वो अंदर डाल दो। तो ये आदर नहीं है, ये अनादर है। भगवद गीता में लिखा है ऐसे जो कठोर तपस्या करते हैं अथवा उल्टा सीधा खाते पीते हैं, मानो वो अपने शरीर को तो तकलीफ देते हैं, अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी पीड़ा देते हैं, अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी पीड़ा देते हैं, तो आदर तो नहीं हुआ। तो आदर करना चाहिए भगवान के धाम का, भगवान के मंदिर का, भगवान जी की लीला स्थलियों का बहुत सम्मान के साथ आदर करना चाहिए। और शिक्षा के लिए ये शरीर भी भगवान का मंदिर है, इसलिए इसका भी बहुत आदर करना चाहिए। बार बार मानुष तन पाना बच्चों का खेल नहीं, बार बार इंसान बनना कोई खेल की बात नहीं है। जब तक जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता मेल नहीं, जब तक कई जन्मों के शुभ कर्मों का मेल होता है तब मानव जन्म मिलता है। ये मानव जन्म मिलना इतना आसान नहीं है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरौ ए भव सिंधुरे, ये मानव जन्म दुर्लभ है, बार बार मानव जन्म मिले ये संभव नहीं है। इसको वैरत मत, हीरे जैसा मानव जन्म कोड़ी बदले जाए रे, ये हीरे जैसा मानव जन्म, इसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वो कोड़ी के बदले, वो बेकार में पैसे के बदले, एक पेनी के बदले में बेकार में जा रहा है। इस शरीर का सदउपयोग करना चाहिए। ये शरीर ऐसी नाव है जो भवसागर पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए इसको चलाने वाला कैप्टन, और एक चाहिए अच्छा सा दिशा, जिस जो रास्ता कि कहां जाना है। शास्त्र रास्ता और दिशा और वायु जो आपकी फेवरेबल है, एयर है, और गुरु कैप्टन है, तब ये शरीर रूपी नाव भवसागर पार कर सकती है। पहले नाव कैसे चलती थी, ऊपर बड़े बड़े कपड़े लगे होते थे ना, हवा फेवरेबल होती थी तब उस रास्ते में जाते थे। तो शास्त्र फेवरेबल विंड है और गुरु कैप्टन है, और ये शरीर नौका है। ये शरीर है तो टेम्पररी, लेकिन काम बहुत बड़ा कर सकता है, भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है, भवसागर पार करा सकता है। तो इसको बेकार में गंवाना नहीं चाहिए खा पीकर, इसको ऐसे बेकार में टाइम खराब नहीं करना चाहिए जीवन का। एकादशी का तिथि का व्रत नहीं करना, अन्न में पाप का निवास होता है और पाप आदमी खाता है, पहले ही पापी और फिर पाप खाएगा तो उसका बाप मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। मरने का मतलब है भगवान से बात कौन है, सबका भगवान है, तो उसके लिए तो भगवान मर ही गया। जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो किस काम का इस दुनिया में। अहम बीज प्रदा पिता, भगवान कहते मैं पिता हूं, तो अपने पिता की आज्ञा नहीं पालन करने वाले को अच्छा बच्चा तो नहीं मानते। और आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौरा मारा जे सब स्थाने कोरिलो भ्रमण रंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं आदर के साथ, लेकिन गौरंगा प्रभु के लिए कहते गौर हमारे, हमारा गौरंगा। ये गौरंगा महाप्रभु जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने सबको आलिंगन किया, गले लगाया, लेकिन कृष्ण ने आलिंगन बलराम जी को किया, सुधामा एक ब्राह्मण को किया, और किसी को ऐसे आलिंगन चलते फिरते कभी नहीं किया कृष्ण ने। कृष्ण से बहुत सब दूर रहते थे, लेकिन चेतना महाप्रभु तो एक देवदासी गा रही थी बहुत सुंदर, और महाप्रभु भाग के उस तरफ भागने लगे। ये तो उस गोविंदा ने पकड़ लिया कि ये कोई लड़की गा रही है, स्त्री। लेकिन वो किसी को भी जाके जो भगवान का नाम लेता है, वो पेड़ का रंग सांवला देखते थे तमाल का, उसको आलिंगन करते थे, ये तो कृष्ण का रंग है। वो पहाड़ है जगन्नाथपुरी में, चटक पर एक गोवर्धन है, अरे समुद्र को देखते थे ये कृष्ण के रंग का है नीला, समुद्र में कूदते थे ये कृष्ण है कृष्ण। तो कितना वो हरेक को प्रेम से आलिंगन करते थे। तो भक्ति विनोद कहते गौर अमार, ये मेरा है गौर, ये कितना बड़ा प्रेम का परिभाषा है। गौर अमारा जे स्थान, जे सब स्थान है कोरिलो भ्रमण रंगे, आनंद में मगन होकर हरि कीर्तन करते हुए जहां जहां चैतन्य महाप्रभु घूमे हैं, जिस दिन जगहों पे से सब स्थाने हेरी बुआमी प्रणय भक्त संगे, उन सब जगहों के ऊपर मैं दर्शन करने जाऊंगा। कैसे? प्रणय भक्त संगे। प्रणय कहते हैं प्रेमी, राधिका है कृष्णेर प्रणय विकार। राधिका क्या है? कृष्णेर प्रणयेर विकार, प्रणय प्रेम का बहुत ऊपर का स्थान है, जहां अपने प्रेमी को और अपने को अलग नहीं समझते हैं। तो ऐसा जो ऐसे प्रेमी भक्त हैं, जो रसिक वैष्णव हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, उनके संग में उन सब जगहों को जाकर मैं देखूंगा जहां चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला की है आनंद से भक्तों के संग में। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है कि उन सब जगहों को जाकर मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूं। जैसे अभी कोई भक्त सब जा रहे हैं आपके यहां से, बहुत सारे वृंदावन में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे, तो वहां जहां जहां जगह, हर जगह पे कृष्ण भगवान की लीला का स्थान है। तो ये हर दिन में 15-20 किलोमीटर चलेंगे और भगवान के बहुत लीला स्थलों का दर्शन करेंगे, स्थानों का, स्थलियों का, और हरि कीर्तन चलता रहेगा। और कार्तिक का महीना है तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो वहां इस समय जा पाए हैं। और ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ऐसे ही गौर मंडल परिक्रमा होती है। ये ब्रज मंडल है, वो गौर मंडल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी गौर मंडल चैतन्य महाप्रभु अति दयालु है, पापी तापी कोई भी है उसको चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लेते हैं, वो किसी को मना नहीं करते हैं, जगाई हो, मधाई हो, कैसा भी हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्नाय, ये रूप गोस्वामी ने प्रयागराज में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तब ये श्लोक रूप गोस्वामी के मुख से निकला था, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। आप बड़े दयालु हैं, कृष्ण का प्रेम इतना आसानी से आज तक किसी ने नहीं दिया, आप ये दे रहे हो, उसके हर जगह को देखेंगे। और फिर क्या करते हैं भक्तियों का, मृदंग बाजा सुनीते मन अवसर सदायाचे। जैसे हम बाहर से आते हैं ना, कहां जाना है ये किसी को पूछना नहीं है, कैसे अंदर कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहा है तो पता लगता है हाँ वहां पहुंचना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कहीं मृदंग बजता है तो मन कहता है कि ये आवाज जहां से आता है वहां मैं चला जाऊं, क्योंकि वहां क्या होगा, वहां भगवान का कीर्तन होगा। तो मृदंग वाद्य मतलब मृदंग का आवाज जैसे मैं सुनता हूं, मेरे मन में ऐसे अवसर सदा, ऐसे अवसर ऐसा मौका मुझे मिलता रहे, उसको मैं ढूंढता हूं कब कीर्तन हो। इसका अर्थ यह है कब भक्त कीर्तन करेंगे, जब भक्त कीर्तन करेंगे और मृदंग का आवाज सुनूंगा तो मेरा दिल मन करता है कि मैं भाग के वहां जाऊं, ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा। तो ये मृदंग क्या बोलता है, कैसे बजता है? हाँ? जो कीर्तन करता है वो ठीक है, बाकी सबको धिकार है धिकार है धिकार है, जो अंदर आएगा वो स्वीकार है, बाहर रहेगा उसको धिकार है। धिकार धिकार। आगे क्या कहते हैं, गौर बेहिते कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। गौर बिहित कीर्तन, इसका मतलब क्या है, वो कीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु ने गाने के लिए कहा है। दो शब्द होते हैं शास्त्र में, विहित और निहित। विहित का मतलब जो करना चाहिए, निहित का मतलब जो नहीं करना चाहिए। कुछ काम करने के लिए नियम बने हैं, तो कीर्तन करने का भी नियम है। एक बार वो तो पुराने जमाने में शुरू में प्रभुपाद जब प्रचार करने गए तो हिप्पी सब लोग थे, तो नाच रहे थे। जब भक्त बन गए तब भी वो ऐसे जैसे आए ऊट पटांग नाच रहे थे लड़कियों के बीच में। लड़कों, प्रभुपाद ने कीर्तन बंद करके बोला ठीक तरह से कीर्तन में कैसे नृत्य करना चाहिए उसका भी नेम है, और कैसे गाना चाहिए उसका भी नेम है। ऐसे नहीं है रोज अपना नया ट्यून बनाने का प्रयास जरूर करने की जरूरत नहीं। गौर विहित कीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का रास्ता बताया है, जो आचार्यों ने कीर्तन की पद्धति बताई है, उसी जैसे मंगल आरती के कीर्तन की धुन अपनी है, संध्या आरती के कल कीर्तन की धुन अपनी है, उसी कीर्तन की धुन को आनंद हृदय हो, उसको सुनता हूं तो आनंद मेरे हृदय में होता है। इसका मतलब है जो संप्रदाय या परंपरा के अंतर्गत नहीं है, ऐसे जो भी आप देख किसी भी मंदिर में जाओ सब भजन गाते हैं ना, और कैसा भजन गाते हैं, वो कोई फिल्मी गाने का भजन होगा उसी को गाना शुरू कर देंगे। वो समझते हैं कि ये भी भगवान की सेवा है, लेकिन वो कोई नेम किसी शास्त्र का नेम नहीं, वो किसने बनाया है अगर जाके देख ढूंढोगे तो भक्तों ने नहीं बनाए हुए हैं, ऐसे कुछ ही कवियों ने बना दिए हैं, और गाने में तो रस लगता है कि गाते हैं, लेकिन वो गाने वाला भगवान का भक्त हो ये संभव नहीं। और हमने ये आंखों से देखा है कि बहुत बड़े कलाकार, बड़े बड़े गाने वाले, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, वो गाते हैं कोई साथ नहीं गाता है, और हमारा कोई भक्त आड़ा टेढ़ा गाता है तो सारे लोग अपने आप उसके साथ गाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये गौर विहित कीर्तन है। नहीं तो 70 साल के प्रभुपाद जी हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और 16 साल के लड़के उसके ऊपर नाच रहे थे, क्योंकि गौर विहित कीर्तन था। ये म्यूजिक का सांग होता तो उधर बहुत बड़े म्यूजिशियन पहले से मशहूर थे, प्रभुपाद के कीर्तन सुनने की जरूरत नहीं थी। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, जुगल मूर्ति देखी अमोरा परम आनंद हो। जुगल मूर्ति राधा कृष्ण को कहते हैं, राधा कृष्ण को जुगल सरकार कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी जुगल मूर्ति है, राधा कृष्ण दोनों उसके एक के अंदर मिले हुए हैं। तो राधा कृष्ण का दर्शन हो अथवा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो, यहां तक कि भी गौरिया वैष्णव कहते हैं कृष्ण कहीं है और राधा नहीं है तो भी हमारा पूजा करने में मन नहीं लगता है, और राधा कृष्ण है और गौरंग महाप्रभु नहीं है तब भी आनंद नहीं आता है। युगल मूर्ति आप जहां भी देखेंगे तो गौरंग महाप्रभु साथ होगा, क्योंकि राधा कृष्ण का पूजा करना अथवा राधा कृष्ण की सेवा करना हमारे बस की बात नहीं है, ये कोई कलयुग का लोग नहीं कर सकता है, ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके भक्तों के परंपरा की कृपा से हमको राधा कृष्ण की सेवा का अवसर मिला है। तो यहां कहते हैं जुगल मूर्ति देखी परम आनंद होए, इसका मतलब रोज जाके भगवान के दर्शन करने चाहिए राधा कृष्ण का। जुगल मूर्ति चैतन्य महाप्रभु का अपने घरों में भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी रखे हुए हैं, दर्शन रोज होते हैं, तो हर एक घर को इस तरीके से मंदिर बना देना चाहिए। और ये सबसे अच्छी लाइन है, ये सबको पसंद है, प्रसाद सेवा कोरिते होए सकल पर पंच जाय। प्रसाद सेवा करें तो सारे दुख दूर हो जाए, ये किसी को इसमें आपत्ति नहीं है। एकादशी तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रसाद सेवा नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके लिए भी बोला प्रसाद सेवन करने से, प्रसाद पाने से, टू ऑनर प्रसाद, प्रसाद खाया नहीं जाता है, प्रसाद का सम्मान किया जाता है, तो क्या लाभ होता है? सकल परमपंच जाए, परपंच का मतलब संसार के दुख, भवसागर ही समाप्त हो जाएगा। भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं, कृष्ण और कृष्ण प्रसाद एक ही चीज है। हाँ, क्या गाते हैं प्रसाद से पहले? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे, महाप्रसाद गोविंद का नाम वैष्णव, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण वैष्णवे, ये जो है इनमें कोई अंतर नहीं। जो इसको ठीक नहीं जानता है उसको कोई लाभ नहीं संसार का। तो प्रसाद सेवन के बाद कहते हैं, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहिते गो लोक भाय, जिस दिन किसी के घर में कीर्तन सत्संग ऐसे देखता हूं तो लगता है कि ये गोलोक धाम बन गया। भक्ति विनोद ठाकुर का ये भाव है कि जिस घर में हरि कीर्तन होता है तो इसका मतलब भगवान वहां अपने आप प्रकट होते हैं कीर्तन के रूप में। कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार है। जहां भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है वहां साक्षात श्री कृष्ण आते हैं। जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो जगह गोलोक धाम हो जाती। तो जिस घर में भजन देखा, जिस घर में भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो गोलोक हो गया। तो भाग्यशाली आप यहां किसी न किसी दिन किसी न किसी घर में सत्संग हो रहा है। दो तीन दिन पहले वनिता माता जी के घर में, आज भोले भाई के घर में, से पहले मोर जी के घर में, तो ऐसे रोज कहीं ना कहीं सत्संग होता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो घर गोलोक हो जाता है। चरण सिधु देखिया गंगा सुख सा सीमा पाय, चरण सिधु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा का दर्शन करना, वो होने होने से इतना सुख मिलता है कि उसकी कोई सीमा का पता नहीं। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर वहीं रहे हैं, नवद्वीप में रह रहे हैं जहां गंगा बह रही है। कहते हैं इस गंगा का दर्शन करने से केवल बहुत बड़ा सुख मिलता है। तो नहाना, गंगा जल का पान करना, ये तो संसार के बंधन से मुक्त करने वाला है। ये गंगा की महिमा गा रहे हैं। तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणी जानी, और तुलसी जहां देखता हूं, पहले जमाने में घरों के बाहर बहुत सुंदर एक स्थान तुलसी का मंडप हुआ करता था। तुलसी को जिसके घर के अंदर देखते हैं तो भक्ति कहते हैं मेरे का प्राण जुड़ जाता है, इसका मतलब मेरा को जान आ जाती है कि वाह 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 वाह, जिंदगी दिखती है कि यहां कोई जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि तुलसी माधव तोषणी जानी, माधव भगवान श्री विष्णु को ये तोषणी का मतलब है संतुष्ट करती है। भगवान कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता नहीं लगा हुआ है, और तुलसी के पत्ते की तो इतनी महिमा है कि भगवान चलु मात्र जले ना तुलसी धले ना बिक जाते हैं। तुलसी के पत्ते और चलु भर जल के ऊपर भगवान अपने आप को बेच देते हैं। एक बार द्वारका की रानियों ने श्री कृष्ण को बेच दिया नारद को, और फिर रानियों उसको पता लगा ऐसे कैसे बेच दिया, कृष्ण को दे दिया, नारद को ले जाऊंगा, बोले नहीं हमको वापस दो, हम कैसे रहेंगे इसके बगैर। बोला तो इसके बराबर तोल के हमारे को सोना दो, जो भी आपके आभूषण है। तो सब रानियां 16,000 लाके सब सामान डाला, एक तरफ कृष्ण एक तरफ सोना, सारे आभूषण डाले, कृष्ण भारी का भारी रह गया। अब क्या करना चाहिए, बड़ी समस्या हुई। किसने पूछा क्या करना चाहिए, बोले तुलसी दल रख दो दूसरी तरफ, तुलसी का एक पत्ता रखा, कृष्ण ऊपर चले गए वापस ले गए। तुलसी के पत्ते से कृष्ण को खरीदा जा सकता है। अभी भी द्वारका कभी जाएंगे तो द्वारका का एक गेट है जिसको कहते हैं समुन्द्र, जहां मिलता है गोदावरी नहीं उधर है गोमती, और समुद्र का वहां से गेट ऊपर आएंगे तो वहां तुला है, तोल के वहां दान करते हैं अनाज का, अपने बराबर अनाज तोल के दान करते हैं जो भी। तो वहां अभी तक परंपराएं चलती रहती हैं तुला दान की, कहते हैं तुला दान, वहां ताराजू बड़ी बड़ी रखती है। हाँ, स्केल होता है, एक तरफ आदमी बैठता है, दूसरी तरफ उतना सामान रखते हैं अनाज जो भी किसी को तोल के देना है। यहाँ सुसु तोल के दे दिया करो बहुत होता है मंदिर में, भाई मेरे बराबर टोल का आज ये चीज दे के आता हूँ, चलेगा। इसको बोलते हैं तुलादान। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय साक सेवने, श्री गौरंगा महाप्रभु ये हरी सब्जियों, उनको साक कहते हैं, वो बड़ा पसंद करते थे, तो वो साक गौरंगा महाप्रभु को अर्पण करके और फिर प्रसाद के रूप में मिले तो मैं समझूं कि मेरा जन्म सार्थक हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वही कुछ खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगता है अथवा जो भगवान को पसंद है। हमारी पसंद कौन? एक महाराज कह रहा था, वृंदावन के अंदर अथवा भारत के अंदर भगवान को भोग तो हमेशा रबड़ी, पेड़ा और पूरी, हलवा ये लगता है, लेकिन जब से पाश्चात्य देशों में प्रचार हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में, तब से पिज्जा ऐसा भोग भगवान को लगने लग रहा। तो भगवान को तो वो पसंद नहीं है, हमको पसंद है, इसलिए बना के भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि अभी है, आप देखो हमने क्या बनाया। तो इसका अर्थ है एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, जो पहले से परंपराओं से, जैसे महाप्रभु के पसंद है, जैसे भोग है, राजा रानी की पसंद है, हाँ, तो ऐसे जिस जिसका जो जो प्रिय चीजें हैं वही भगवान को अर्पण करनी चाहिए और फिर उसी को आनंद लेके पाने में आनंद करना चाहिए। हमारी च्वाइस भगवान के ऊपर लगाना ही, तब से अब तो क्या प्रसाद में जा रहा है उसका कुछ नाम नहीं आते हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं। और फिर कहते हैं, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाओ। जहां भी कृष्ण भजन के लिए सुविधा हो वो जगह मुझे अच्छी लगती है। इसका अर्थ कहीं भी मुझे दुनिया में ले जाओ, लेकिन कृष्ण भजन हो तो मैं वहां सुखी रहूंगा। प्रभुपाद जी एक दिन बैठे, 66 के 66 था, अमेरिका में, कह रहे थे आज मैं देखता हूं तो गौड़िया वैष्णव कैलेंडर कहता है कि गौर पूर्णिमा है आज, वृंदावन मायापुर में सब भक्त गौर पूर्णिमा की तैयारी करते होंगे, लेकिन मैं यहां अकेला बैठा हूं, कोई न साथी है न संगी है, और मैं अपने आप को दूर से देख रहा हूं कि वृंदावन और मायापुर से दूर हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु महाराज का आदेश पूरा करना है, यहां ये प्रचार करना है, इसलिए यहां कीर्तन करके यही मनाने से ये स्थान जो है हमारे लिए, क्योंकि यहां भक्त कीर्तन कर रहे हैं तो ये स्थान हमारे को स्वीकार है, भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए अनुकूल है, ये लोग अनुकूल है, इसलिए मैं यहां बैठा हुआ हूं, क्योंकि ये कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो आज वृंदावन में होता तो अच्छा था। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कोरिया तत्ता। हर इसका मतलब ये नहीं कभी कभी भजन होना चाहिए, प्रति दिवसे हर रोज ऐसे मौका मिले जहां भगवान का भजन हो तो मैं समझूं कि मेरा जन्म सार्थक है। तो ये भजन हमको हर एकादशी के दिन गाना चाहिए बड़े प्रेम से, और इसका भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आज तीन महान आचार्यों का तिरुभाव तिथि है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। तो एक और भजन आज गाएंगे, जाने लो प्रेमाधन। हाँ 34 मिनट 20-25 मिनट उसमें हो जाएंगे, चलिए।